Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2731-7106. I beg your pardon, it should be 2371-7106. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. रोज की तरह आज भी हम आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं, 2331-4444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत
है। वार्म वेलकम शिशिर।
थैंक यू, नमस्कार।
आइए पहले हेडलाइंस लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
वोलेटाइल वीक लीव्स बीएसई सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज फ्लैट, लेट रिकवरी इजेस लॉसेस, गवर्नमेंट नोटिफाइज इनकम टैक्स रूल्स 2026, न्यू फ्रेमवर्क फ्रॉम नेक्स्ट मंथ टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी and reduce disputes. And oil prices jump sharply amid rising geopolitical tensions.
Sensex aur Nifty is saptah bina kisi khas badlav ke band hue. Saptah ke ant mein recovery ne kafi had tak ghate ki bharpai ki. Sarkar ne आयकर नियम 2026 अधिसूचित किए। पहली अप्रैल से लागू होने वाले इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों में कमी आएगी, और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच तेल के मूल्यों में उछाल दर्ज किया गया।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Or आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह भी उथल पुथल जारी रही। हालांकि बाजारों के साप्ताहिक प्रदर्शन में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव, रुपए में लगातार कमजोरी, कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजारों में निराशा का माहौल बना रहा। सप्ताह के पहले तीन दिनों में बढ़त दिखाई दी थी, लेकिन बृहस्पतिवार को तेज गिरावट ने इस पर पानी फेर दिया। शुक्रवार को हुई रिकवरी ने बाजारों को फिर से सप्ताह के शुरुआती स्तर के आसपास लाने में मदद की। सप्ताह के अंत में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 30.96 अंक यानी 0.04% की गिरावट के साथ 74,532 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.6 अंक यानी 0.15% गिरकर 23,114 अंकों पर आ गया। बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांक लगभग स्थिर रहे। शशि जी क्या कहेंगे, बड़ा अलग तरह का सप्ताह था कि गिरावट हुई फिर थोड़ी रिकवरी हुई, किस तरह से आप इसको विश्लेषित करेंगे?
देखिए इस साल पहली जनवरी से लेकर के आज जब हम लोग 21 मार्च को बात कर रहे हैं तो 20 मार्च तक निफ्टी में लगभग 12% की गिरावट हो चुकी है। बीच बीच में एक आपको रैली देखने को मिलती है और दरअसल वो रैली जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि निचले स्तर पर खरीदारी या वैल्यू बाइंग जिसको हम लोग कहते हैं वो हो रही है। उन सब के बीच में एक चिंता बाजार की सबसे बड़ी यही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, एक दूसरा डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और तीसरी बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दरों में जो पहले कटौती के संकेत दिए थे अब वो संकेत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां से विदेशी निवेशकों को अपना पैसा निकालने के लिए एक तरीके से कहें प्रेरित कर रही है और आप देखें कि जो उनका आउटफ्लो है वो काफी हेवी हो चुका है। तो अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों का जाना और दूसरी बात यह है कि डॉलर का लगातार मजबूत होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है।
We'll continue our discussion with Shishir. In the meantime, we are joined in by Sunil from Mumbai. A warm welcome, Sunil.
नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम
जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सिन्हा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इस समय ठीक रहेगा जी?
देखिए सुनील जी, इस समय में सोने की स्थिति जिसे कहते हैं ना कि एक प्रचलित धारणा के खिलाफ जा रही है। वैसे कहते हैं कि जब युद्ध की स्थिति होती है, वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति होती है, और हमने भी अब इस कार्यक्रम में कई बार ऐसा कहा है कि जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है वैसे वैसे सोने में निवेश काफी तेज हो जाता है, सोने के भाव काफी तेजी से ऊपर जाते हैं और बीते कुछ समय में हमने देखा कि सोने और चांदी दोनों ने ही आसमान छुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और डॉलर इंडेक्स जो है वो भी जिसे कहा जाए कि डॉलर के पक्ष में दिख रहा है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी बाजार डॉलर मजबूत होता है तो अनिश्चितता के बावजूद सोने के भाव गिरते हैं। इस समय में अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है जो आप निवेश करना चाहते हैं तो उसका एक हिस्सा आप लगा सकते हैं सोने में, और वो भी आप अगर आप ध्यान रखें कि किस्तों में आप लगाएं। और एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोने में निवेश करना हो तो गहने ना खरीदें, अगर खरीदना हो तो बिस्किट खरीदें, और अगर आप शेयर बाजार के रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ETF है, वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा।
वी हैव संदीप रस्तोगी फ्रॉम गुरुग्राम विद अस नाउ। संदीप, अ वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। संदीप, कैन यू हियर अस?
हेलो,
या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
या गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मार्केट जो है काफी डेली बेसिस पे डाउन हो रहा है और कुछ लोगों की अवधारणा है कि 75,000 की जगह 65,000 तक सेंसेक्स पहुंचने की उम्मीद है, तो इस स्टेज पे अगर हम बने हुए हैं इसमें तो परचेज करना चाहिए या निकलना चाहिए कि भाई अगर ये अगले 8-10,000 सेंसेक्स और नीचे जाते हैं तो शुड बी वेट और शुड बी इन्वेस्ट मोर?
संदीप, आपका ये जो एक उम्मीद शब्द है, पहले तो मैं आपका इसका प्रतिकार करूंगा। मैं कहूंगा कि आशंका कहिए तो ज्यादा बेहतर है कि कितना हद तक गिर सकता है। ये आशंका अगर आप उम्मीद कहेंगे तो लोगों को एक उम्मीद बनती है कि शायद चीजें बेहतर होंगी। चलिए हम भी उम्मीद बांधे हुए कि बाजार बेहतर होगा। अभी के समय में ये उम्मीद थोड़ी सी कमजोर पड़ गई क्योंकि युद्ध के खत्म होने की या युद्ध कब खत्म होगी इसको लेकर के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे में आपके लिए निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से दो चीजों पर ध्यान रखिए। अभी जैसे मैंने सोने को लेकर के एक सुझाव दिया था कि आपके पास पैसे हैं तो उसका एक हिस्सा आप लगाएं, उसी तरीके से शेयर बाजार में अगर आपके पास पैसा है जो आप जिसको हम लोग कहते हैं कि अतिरिक्त आपके पास है उसका एक हिस्सा आप अभी बाजार में लगाएं, फिर जब दूसरी बार गिरावट आए फिर दूसरी बार लगाएं, यानी कि किस्तों में जाइए और
लमसंप में नहीं जाना,
लमसंप में बिल्कुल नहीं जाना है। और दूसरी बात यह ना कि डेली बेसिस पे मार्केट मत ट्रैक करिए। ये जो एक रोज रोज बाजार आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मेरा पैसा इतना कम हो गया, मेरा पैसा इतना कम हो गया, थोड़ा सा समय दे दीजिए। उम्मीद रखिए कि अगले 6 से 8 साल में जो आज आप पैसा लगा रहे हैं वो बेहतर होगा। देखिए 2008 में भी जब हम निफ्टी में हमने लगभग 59% की गिरावट देखी थी और उसके बाद 2014-15 तक आते आते जिन्होंने 2008 में निवेश किया था उनको किस तरह से फायदा हुआ था। फिर अगर हम 2020 की बात करें जब कोविड का हाल था उस समय भी बाजार में जो गिरावट आई थी उस समय लोगों ने निवेश किया और जो 2025-26 में उनको फायदा हुआ। अभी की स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि जब कभी भी एक गिरावट हो वैल्यू बाइंग जो हाई जिसको कहते हैं कि ब्लू चिप शेयर्स हैं उसमें आप छोटे छोटे खरीदारी करते रहें, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, हर गिरावट आपके लिए एक मौका है।
और दिल्ली से हमारे श्रोता योगी शर्मा जी लाइन पे हैं। योगी जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
और मेरा ये सवाल है कि इस टाइम पर जो भी वार चल रही है तो डीप वैल्यू बाइंग के लिए हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो हम लमसम कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट गिरी है लमसम हम कर रहे हैं इसमें। पर सवाल इसमें ये है कि कभी ऐसा होता है कि जैसे मार्केट एक ही दिन में, हमने सुना है कि कोविड के टाइम पे 5% गिर गई, 13% गिर गई एक ही दिन में, ऐसे केस में जो मेंटल ट्रॉमा होता है उससे कैसे उससे कैसे मतलब कि पार पाया जाए। दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड में जो हमेशा रिवर्स चलता था मार्केट के साथ में और युद्ध के टाइम बढ़ता था पर वो भी देख रहे हैं उसमें भारी भारी गिरावट बीच में आ रही है, तो ये गोल्ड का स्क्रिप्ट क्या अपनी गोल्ड भूल चुका है?
जो पहला आपका प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक जो एक दबाव पड़ रहा है, क्षमा चाहेंगे हम कोई मनोचिकित्सक हैं नहीं जो आपको हम ये कह सके कि ऐसे में आप अपने मन मस्तिष्क को कैसे नियंत्रण में रखें। देखिए हकीकत है बाजार जब गिरता है आपने पैसा लगा रखा है, गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं अफसोस तो होता है, दुख तो लगता ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जिसे मैं कहता हूं ना कि हमेशा ये हमेशा मैंने एक सुझाव रखा है कि जब जब कभी भी गिरावट आए ना तो एक छोटी सी खरीदारी कर लीजिए और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, एवरेज कॉस्ट को कम करिए और थोड़ा समय दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा ना 2008 की भी हमने परिस्थितियां देखी, हमने 2020 की भी परिस्थितियां देखी हैं, बीच में अगर आप याद करिए तो 2012 में जब यूरोपीय बाजारों में संकट आया था तब भी हमने परेशानी देखी है। तो हर परेशानी एक मौका देता है और वो मौका जो है आपके लिए एक लंबे समय में आपके निवेश पे फायदा करने का मौका बना सकता है। अब वो समय कितना होगा ये कहना अभी के युद्ध के समय में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मेरा अनुमान है कि 6 से 8 वर्ष का समय जो है शेयर बाजार में अगर आप दिया जाए तो वो निवेश आपको फायदा दे सकता है।
और गुरुग्राम से हमारे श्रोता महेश लाइन पे हैं। महेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मुझे ये पूछना है कि हमें कुछ अमाउंट अपने बेटे के पास भेजना है यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम किस तरह से भेज सकते हैं और क्या तरीका है, कोई लीगल तरीका क्या है उसका?
महेश जी बहुत आसान तरीका है जिसको हम लोग LRS कहते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कहते हैं। उसमें $2,50,000 तक जो है वो आप वैधानिक रास्तों के जरिए आप भेज सकते हैं, बैंकिंग चैनल है आपके पास उसके जरिए आप भेज सकते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं उनके जरिए भेज सकते हैं, कुछ आपको कमीशन देना पड़ेगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप किस लिए भेज रहे हैं, अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आपको TCS नहीं देना पड़ेगा, लेकिन और किसी काम के लिए दे रहे हैं तो उस पर TCS लगेगा जिसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये रास्ता है आपके लिए और ये सारे रास्ते जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं, केवल आपको जिसे एक स्रोत कहते हैं वो बताना है और जहां जाना है उसका आपके वैधानिकता को आपको स्थापित करना है।
वी टेकिंग कॉल्स फ्रॉम यू लाइव, द नंबर्स टू कॉल अस ऑन आर 2331444 2331 0481 and 2371 7106. Please do add 011 as prefix before these numbers if you're calling us from outside Delhi. From Bhopal, we are joined in by Shankar. A warm welcome, Shankar.
Namaste, good evening, Mark.
Hello.
Namaste, sir.
आपकी आवाज नहीं आ रही साहब.
आपकी आवाज.
Hello. नहीं.
While we wait for Shankar to call us back again, let's tell you that Wall Street logged losses yesterday as Middle East conflict escalated and treasury yields surged. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined almost 1% and the Nasdaq Composite Index dropped over 2% and the S&P 500 dropped nearly 1.5%. Shishir, what do you have to say about the Fed March 2026 meeting, which kept the funds rate unchanged in the 3.5 to 3.75% band and signaled at best one more cut this year.
But that cut is really, at this moment, it's very difficult to say.
No, we're conjecturing it is difficult,
yeah,
but
course.
They said that there could be one
there could
more.
Be. It's subject to inflation, what kind of inflation we are going to have. And we should not forget that even in US post-tariff thing, post-tariff action, there have been some kind of increase in the inflation rate also.
So all these points that you're mentioning, Shishir, how do they compound the pressure on Indian equities and rupee expectations?
When the US rates are higher, or US rate are not changed, the foreign portfolio investor will feel it much more safer there, because the return in the in that bond or US treasury, that will be higher than the equity, and that could be the reason. One more thing before I move to the next caller, who is Ratnakar ji from Mumbai. Ratnakar ji, ek minute main aapka samay lunga. Uske pehle main bata dun ki jo pichle hamare jo shrota the, unhone sawal sone ko lekar ke bhi pucha tha ki sone mein vipreet paristhiti kyon dikh rahi hai. To ek baar fir hum is baat ko dohra de ki chuki dollar lagatar majboot hota ja raha hai aur इस कारण से अनिश्चितता के बीच भी सोना और चांदी जो है वो गिरावट में आया है. एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि सोने और चांदी काफी ऊंचे स्तर पर जा चुके थे, तो मुनाफा वसूली का कोई मौका जो है वो कारोबारी व्यापारी नहीं छोड़ रहे हैं. और तीसरा जो कि अहम तथ्य है कि केंद्रीय बैंक जो है अभी भी सोने की खरीदारी बाजार से कर रहे हैं, उसका भी असर आपको पहले देखने को मिला था. अब जब निचला स्तर आया है, उन्होंने खरीदारी की है लेकिन उतना व्यापक स्तर पे नहीं कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं. तो ये दो तीन कारण है जिसकी वजह से हमने सोने की
मतलब सोना में वो सैचुरेशन पहले ही आ गया.
सोना में सैचुरेशन आ गया और लड़ाई जो है इसीलिए लोगों को ज्यादा हैरान कर रहा है कि लड़ाई में सोना क्यों नहीं ऊपर गया, अनिश्चितता है क्यों नहीं ऊपर गया. लेकिन आपको डॉलर के ऊपर भी ध्यान देना होगा. अब रत्नाकर जी के पास हम लोग चल सकते हैं.
जी जी, रत्नाकर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है कि जो अभी मार्केट की इंटरनेशनल पोजीशन है, उसकी वजह से कॉमन जो इन्वेस्टर है उनकी मानसिकता बहुत नीचे आ रही है, तो उसके लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं? और समझो दो तीन दिन में युद्ध खत्म होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा क्या? थैंक यू.
आपकी दूसरी जो बात आपने कही है, हम इतना ही कह सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी और कोई खबर हो नहीं सकती है. लेकिन अभी उसके ऊपर कोई भी अटकल लगाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है. अब रहा सवाल कि लोगों का नुकसान, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की है तो ये इस समय में निश्चित तौर पर आपको काफी ज्यादा गिरावट आई है. मेरा ये एक सुझाव जो मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान दे रहा हूं कि किस्तों में खरीदारी करना शुरू करिए. जब कभी भी गिरावट आए, जो बहुत ही जिसको कहते हैं ना ब्लू चिप हैं, जो चुनिंदा शेयर हैं, उनमें छोटी छोटी खरीदारी करना शुरू करिए और थोड़ा उसको समय दे दीजिए. यकीन मानिए कि इस मानसिकता से निकलने का यही एक तरीका है कि आप आगे के लिए क्या रणनीति बनाते. देखिए दुख में डूबे रहेंगे तो फिर तो आपका फिर कभी कुछ नहीं बन सकता. थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे दार्शनिक हो जाऊं लेकिन हकीकत यह है कि दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा. हमें समाधान ढूंढना और समाधान मेरे हिसाब से यह है किस्तों में खरीदारी.
और दिल्ली से हमारे श्रोता अमित लाइन पे है. अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
नमस्कार सभी को सर. सीना सर से सर प्रश्न मेरा ये है सर कि अभी जो हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है सर, हमारे देश के साथ की जो इम्पोर्ट बिल है सर वो लगातार बढ़ता जा रहा है सर. पिछले महीने का ही आया था, 71 अरब डॉलर का हमने इम्पोर्ट किया है, 35 अरब डॉलर का हमने निर्यात किया है, ठीक है सर, एक्सपोर्ट किया है. तो मैं ये मुझे डर ये है सर कि इस महीने तो हमने क्रूड तो $100 के हिसाब से हमने बाइंग किया, जो कि हम फरवरी के महीने में $60 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होते थे गवर्नमेंट के बीच में, सरकार और गल्फ कंट्री के बीच में. तो सर राजकोषीय घाटा तो अभी और बढ़ जाएगा, व्यापार घाटा और बढ़ेगा, तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है, उन्होंने कुछ करा है? और दूसरी चीज सर कि जैसे आपने कहा ब्लू चिप, तो सर मैं तो देख रहा हूँ सर कि दिग्गज अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां जो ब्लू चिप बैंकिंग में है, जो आईटी में है, वो अभी 52 वीक लोएस्ट पे चल रहा है सर. लोएस्ट के बाद भी 10-15% की गिरावट होती है, तो सर डर भी लगता है कि ब्लू चिप भी ठीक पाएगी क्या रिकवर कर पाएगी. धन्यवाद सर.
नहीं नहीं अमित जी, बिल्कुल आपका डर बिल्कुल वाजिब है. और कहते ना एक पुरानी कहावत भी, डर के आगे जीत है. तो शायद आप अभी जो ब्लू चिप है, कोई भी जो एक बड़ी कंपनी है जहां पर जो भाव 5000 पे चल रहे थे, यदि वो 52 वीक लो पे आ गए हैं और आपको मान लीजिए कि 3000 में आपके लिए या 2500 में आपके लिए खरीदारी का मौका दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा सुझाव यही है कि किस्तों में जरूर खरीदिए। अब रहा सवाल आपने जो पहले पूछा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं सरकार के ही आंकड़े देख रहा हूं, जो पीपीएसी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस लेते हैं, वहां पर मार्च के महीने में औसत कीमत $117 प्रति बैरल पे पहुंच चुकी है, जो हमारा इंडियन बास्केट है। तो ये एक चिंता का विषय है कि कैसे हम इस घाटे से निपटेंगे, और राजकोषीय घाटा तो बाद में आएगा अगर आप कर में कटौती करते। देखिए, अगर आम आदमी को राहत देनी है, पेट्रोल डीजल की कीमत अगर नहीं बढ़ने देनी है, तो उसका एक तरीका आपके पास क्या है कि आप उसके ऊपर कर कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं। थोड़ा सा यहां पे आपसे मैं कहना चाहूंगा कि दो तरह के हमारे पास कर हैं, एक जो कि केंद्र सरकार लगाती है और एक राज्य सरकार का है। तो केंद्र सरकार जो कर लगाती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट, यानी कि जो हमारा केंद्रीय उत्पाद कर है, जिसके तहत चार तरीके के कर होते हैं, एक कर होता है और तीन तरीके का सेस होता है, वो हमारा जो है स्पेसिफिक है, यानी कि ₹19.90 प्रति लीटर की दर से आपको पेट्रोल पे देना होगा, जबकि राज्य सरकारें जो हैं वो एड वेलोरम यानी कि प्रतिशत के हिसाब से लगाती हैं। तो अब केंद्र सरकार अगर उसको कम कर देती है, मान लीजिए 19.90 को घटा करके 14 कर दें या फिर 13 कर दें, तो इसका असर राजकोषीय घाटे पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। दूसरी ओर चूंकि रुपया कमजोर हुआ है, 93 के असर को भी पार कर चुका है, तो ऐसे में आशंका यह कि जो हमारा चालू खाता घाटा है, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम लोग कहते हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि जो आप डॉलर में भुगतान हासिल करते हैं और जो डॉलर में भुगतान करते हैं, उसका अंतर चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है। अभी जो आखिरी उसके आंकड़े आए थे वो 1.3% था GDP का, और हमारे लिए जो टॉलरेंस लेवल है वो 2% का है। तो अब यदि वो 2% के ऊपर जाता है तो हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है, ये एक हकीकत है। ये आंकड़े सरकार के ही आंकड़े हैं और सरकार के ही जो अधिकारी हैं वो इस चीज को सामने रख रहे हैं, तो ये परेशानी की बात तो है। उम्मीद करनी चाहिए कि युद्ध जल्दी खत्म हो।
चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये नियम आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लागू करते हैं, पुरानी प्रक्रियात्मक प्रणालियों को प्रतिस्थापित करते हैं और परिभाषाओं, अनुपालन संरचनाओं और नए ढांचे को शामिल करते हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखने, आम बैठकें आयोजित करने और लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा। आप निश्चित जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इन जो 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 परिवर्तन है इनका असर स्टॉक एक्सचेंजेस पर या जो कंपनियां हैं और जो घर जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग आयकर अदा करते हैं उन लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा?
देखिए, एक व्यक्ति कर दे लेकिन कर चुकाना कितना आसान हो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो नया आयकर कानून है, आप देखिए नया आयकर जो हमारा कानून है जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, इसके पहले का कानून 1961 में बना था और नियम आए थे 1962 में। 6 दशक में इतने बार बदलाव हुए क्योंकि हर वर्ष वित्त विधेयक के जरिए उसमें बदलाव किया जाता था, तो वो ऐसा बदलाव हो गया कि कई बार जो एक धारा है उसकी उपधाराएं इतनी उपधाराओं में चली गई कि जिससे उसकी मूल जो थी वो कहीं ना कहीं खो गए। अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि नया कानून आपके लिए सरल सहज व्यवस्था को लेकर क्या है। अब जैसे मैं एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि पहले जो 819 धाराएं हो गई थी, अब वो घट करके 536 धाराएं हैं। अब अगर आप चैप्टर की बात करिएगा तो 47 थी जो घट करके 23 हो गई है। शब्दों की बात करें पूरे आयकर कानून की, तो 5.12 लाख पहले थी, अब वो घट करके 2.6 लाख है। और सबसे बड़ी बात है कि हर धारा के नीचे उदाहरण देकर के बताया गया कि यदि आपका आपकी आय इस तरीके की है तो आपके लिए कर का ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक सरल सहज कानून है। याद रखिए, हमारे श्रोताओं के लिए भी याद रखना जरूरी है कि 31 मार्च 2026 तक जो आपके विवाद हैं, जो आपके 1961 के कानून और 1962 के नियम के हिसाब से हैं और जो अदालतों में लंबित हैं या कहीं पे हैं, वो लंबित रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आगे की बात है, उसका निपटारा उस कानून के हिसाब से होगा। पहली अप्रैल 2026 से जो भी लेन देन होंगे वो नए कानून और नए नियम के हिसाब से होंगे। सरल है, उम्मीद है विवाद कम।
द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज इजियर बट व्हाट आई पे is not.
No, certainly. So certainly, I mean, if you are expecting that I have to pay less, I'm sorry, that's not the issue. Okay. The only thing
so
is...
So can you give us some example as to how it will simplify my life?
I can give you some perquisite, like a salaried person, because I have made a table. So according to that table, for example, free or concessional educational facility for any member of employee household. Earlier, the limit was ₹1,000. Now it is ₹3,000. Then interest-free concessional medical loan, the company which can give you. Earlier it was 20,000. Now it is more around ₹2 lakh. Another thing is the HRA. Many of the office people or the salaried people, they are much more concerned about the HRA thing. So earlier the HRA for the 50% of the basic salary was applicable in the four cities, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Now four more cities have been added, that is Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad and Pune. But please remember, Noida and Gurugram are not part of that. So if you are thinking that if you are living in Gurugram and you will get the benefit, sorry, you are not going to do that. So at the end of the day, coming to your basic question, you don't have to pay less, but what you have to pay,
how you
it
pay
will
easier.
Be in the easier manner. That's
okay. Moving on, the global crude oil prices surged today amid escalating geopolitical tensions in the Middle East, pushing benchmark higher for a fifth straight week. Brent crude was trading over 2.8% up at $106 and 77 cents per barrel, while West Asia Texas Intermediate crude was trading 2.2%, climbing over to $98 and 32 cents per barrel when reports last came in. There seems to be no inclination that the rates are going to come down further.
As of now.
Till Hormuz opens.
That's true.
Okay.
और चलते हैं अब अपने अगले श्रोता की ओर। भोपाल से शंकर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शंकर नमस्कार, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्कार शिशिर सिन्हा जी को नमस्कार। सर, देयर आर सो मेनी एजेंसीज लुकिंग इनटू एक्सपेंसेस ऑफ पीपल, एक्सपेंसेस ऑफ कंपनीज एंड पॉइंटिंग आउट कि ये गलती है, वो गलती है, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। I am referring to income tax and other agencies. But is there any agency which looks into the government expenditure, especially on advertisement, which government does, and whether it has gone up phenomenally, or it, for example, last year 3% था, तो इस साल 3.25% था, ऐसे 5% double हो गया, triple, इसके ऊपर कोई agency है क्या? क्योंकि यही same चीज situation with state finances, because Madhya Pradesh state has taken 5 lakh crore loan, and there is no control. Is there any agency which is looking into these matters, sir?
शंकर जी, सरकार के खर्चों पर नजर रखने की जिम्मेदारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है, और वो ऐसे चीजों में वो जरूर बताते हैं कि आपने खर्च जो किया है वो कहाँ पे किया है और ये कितना हद तक सही है। अब अगर एक विशेष हम कहें कि यहाँ पर खर्च ज्यादा हो रहा है, वहां पे खर्च हो रहा है, वो सरकार के बजट दस्तावेजों में भी आता है, लेकिन सीएजी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें काफी पड़ताल की जाती है।
Ankush joins us from Shamli. Ankush, a warm welcome. Very briefly, please. I don't think we have him online with us. In the meantime, Secretary of Economic Relations in the Ministry of External Affairs, Sudhakar Dalela, today said that the global economy is navigating an extraordinary period marked by the aftermath of the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts and disruptions in supply chains, energy and trade flows. He made these remarks while addressing the International Conference on Multilateralism Under Pressure Roadmap to the WTO Ministerial Conference in New Delhi.
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
थैंक यू शशि फॉर बींग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, वोलेटाइल वीक लीव्स बीएसई, सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज टू फ्लैट। लेट रिकवरी इजीज लॉसेस। Government notifies income tax rules 2026, new framework from next month to improve transparency and reduce disputes. and oil prices jump sharply amid rising geopolitical tensions. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.